UBL रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन है पाकिस्तान,
जश्न है आजादी का, यूनाइटेड है पाकिस्तान।
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड एग्जैक्टली 6 बजे, एकदम टू द डॉट 6:27 हमारे घड़ियों में हो चुके हैं। चलो साहब, कर लेते हैं चलो साहब ले आते हैं किसको, शाजिया को हम भी कुछ मर मर के खबरें सुना दे आपको ना खबरें सुनाएंगे हम आपको थोड़ी सी गैस कम है मगर फिर भी वेलकम बैक अगेन। एंड साहब डायरेक्ट चलेंगे हम कहां पर, शाजी मलिक की जाने और सारा माइक एंड कैमरा एंड एवरीथिंग एल्स टू शाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। भाई साहब, मुझे पता है आप सुबह से काम कर करके बहुत थक गए, मुझे पता है। मैं देख रही थी आप कॉन्स्टेंटली खड़े हुए थे। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मैं बीच बीच में से थोड़ी सी बदनीति दिखा रही थी। मैं जाके ना कमरे में बैठ जाती थी भाई सीधी बात है, हम तो थक जाते हैं भाई। तो आप तो सुबह से आप और आरफा बाजी खड़े हुए हो, माय गुडनेस। मैं कह रही थी यार, ये आज कौन सी एवर रेडी बैटरी पी के आए उस वक्त। फिर मैंने आप लोगों को कहा खाना खा लो, आप लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी काम चल रहा है। तो मैंने कहा भाई हम तो नहीं इतना कर सकते, मुझे तो बैठना है आप बहुत हो गया।
बट थैंक्स टू ऑल द वॉलंटियर्स
वॉलंटियर्स यस, इतने प्यारे बच्चे थे ना जो सारे आए हुए थे,
सारे बच्चे और बड़े भी,
बड़े भी कई तो बड़े। हाँ, और इन सबको मैंने कहा कि भाई तुम लोग कुछ खा लो। नो, वी विल फिनिश आवर वर्क। मैंने कहा ये बहुत देर तक काम करना है तुम लोगों ने, तो ये कुछ खाओ फिर तुम लोग काम करना। तो बड़े प्यारे थे सारे। और वो जो ओल्ड एक लेडी भी आई हुई थी और एक छोटी सी मुन्नी सी गुड़िया सी आई हुई थी, और वो इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी, वो भाग भाग के हर जगह। अच्छा, एक बॉक्स में ना दो वो डाल रही थी, फिर उसके साथ जो उसके भाई आए हुए थे फिर वो निकाले उसमें से, फिर वो नो आई विल बचा। एक उसको इतना प्यारा है ना, एक कुकी का पैकेट उसको इतना पसंद आया, वो उसने उठा लिया ऐसे करके, कहती दिस इज माइन। उसकी माँ ने कहा नहीं, ये हम इनके लिए ये चीजें हैं, ये इसमें डालनी। कहती नो दिस इज माइन। फिर वो आपको पता ही है मेरे कमरे में चॉकलेट्स होती हैं, फिर मैंने वो उसको दी, तो फिर वो उसने कुकी का डब्बा छोड़ा।
जस्ट इमेजिन नाउ, इससे अंदाजा लगाएं कि वो लोग जो पाकिस्तान में भी बेघर हैं, उनके भी बच्चे ऐसे हमारे बच्चों की तरह हैं।
एग्जैक्टली, है ना। मैं वही नेक्स्ट उनके हाथ में
उनके पास
करने लगी थी।
उनके पास जब ये कुकी का डिब्बा जाएगा
कितनी खुशी होगी,
कितनी खुशी होगी उनको, है ना। तो वो इस स्पिरिट से हम काम कर रहे हैं कि यार उन लोगों के किसी भी बच्चे के हाथ में, किसी बड़े के हाथ में चावल और दालें और ये दूध और चाय वगैरह जब पहुंचेगी, तो उनके पास जो सेटिस्फैक्शन उनको होगा, उनकी जो मुस्कुराहट आएगी, बस वो जितना हमने मेहनत की वो सारा हमारा मेहनत पूरी हो गई।
बिल्कुल बिल्कुल वही है माजिद भाई। और आप लोगों ने असल में बहुत टॉल टारगेट अपने लिए रख लिया है। अगर आपने ये 250-300 बॉक्सेस भिजवाने होते ना, तो आपका काम कल तक हो जाना था। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हमने 10,000 का हमने रखा हुआ है टारगेट, तो ये इट्स अ वेरी वेरी टॉल टारगेट। और वही मैं बता रही थी,
मैं आपको बताऊं एक बात कि हमने पिछले 22 साल में टेलीथॉन्स एंड रेडियोथॉन्स किए हैं, और आस्क पीपल नॉट फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो नॉट फॉर आर ओन, हमारे लिए अपने के लिए नहीं चाहिए पैसा, मगर हमने किसी भी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऐसे डिजास्टर्स हो, इनके लिए जब पैसे की अपील की तो लोगों ने दिल खोल के दिया। यू नो आई प्रूव यू यस्टरडे, $156,000 हमने रेज किए एक दिन के अंदर, यस्टरडे ओनली। तो अब अगर ये 10,000 का है इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग, ये तो एक आदमी एक मुकय्यर जो हजरात होते हैं उनमें से एक मुकय्यर शख्स जो है वो कह सकता है कि यार ये 10,000 का कितने का है ये, ओके आई टेक केयर ऑफ इट। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं मैं कि मस्जिद आईएफटी जब इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो बन रहा था तो जब नई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई लोग आ गए नमाज पढ़ने के लिए तो वहां पार्किंग की तरह मुश्किल होती थी तो हमें एक पार्किंग बनाना था डबल स्टोरी पार्किंग लॉट है ना रैंप के साथ तो एट दैट टाइम द कॉस्ट वॉज $1 million है ना दैट वॉज अ बिग मनी एट दैट टाइम। आज तो अगर उसको बनाना चाहे तो $5 million में बनेगा वो मगर वो $1 million में बनना था। तो रमजान अल मुबारक के महीने में हमारे मौलाना साहब जो है उन्होंने खड़ा हुआ उन्होंने कहा कि भाई हमें ये बनाना है तो लोगों ने अपनी सोने की चूड़ियां अंगूठियां हार और जो भी उनके पास चीजें थी कैश ये वो सब देना शुरू कर दिया। तो वहां पर एक भाई साहब खड़े थे थोड़ी देर बाद ना एक नमाज के लिए बैठे हुए थे तो वो भाई साहब ने क्या किया सब लोग जा रहे थे क्या हाथ उठाते थे कि भाई मैं यू नो आपको डोनेट करना चाहता हूं कुछ तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया कुछ खामोशी से उन्होंने उस चेक दी उस पर $1 million लिखा हुआ था $1 million उस पर लिखा हुआ था। इत्तेफाक से वो मेरा भाई था छोटा जो जिन्होंने उसका चेक लिया तो जब चेक लिख के उसने चेक को देखा तो उसने कहा कि सर आपने कुछ ज्यादा जीरो नहीं लिख दिया इस पे तो कहने लगा मेरा नाम अनाउंस नहीं करना
ओह माय गॉड
बस इतना कहना कि एक आप नमाज शुरू कर दें ये हमारी जो $1 million का टारगेट था हमने पूरा कर दिया।
ओह माय गॉड रियली
जस्ट इमेजिन दैट
इमेजिन
तो वो एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि भाई किस शख्स ने दिया है तो उसने कहा मेरा ना मुझे मेरा इशारा करना ना मेरा नाम लेना ना किसी को बताना किसने दिया है बस ये आप जाके कैश करा लें।
वाह जी वाह क्या बात है
है ना तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये 10,000 का जो टारगेट हमने रखा है तो इट्स नॉट अ बिग टारगेट एक नहीं तो दो दो नहीं तो पांच पांच तो दस लोग मिलके ये पूरा कर सकते हैं और इसके अलावा जो लोग $100 $50 $25 $200 $500 कल लोगों ने $1,000 दिए लोगों ने $5,000 दिए कल तो अगर वैसे ही अगर ये लोग सामने आते रहे उन्होंने किया तो ये हमने 3 हफ्ते का टारगेट जो रखा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। बस आपसे इल्तिजा है info@superasia.ca और जब भी आप कुछ पैसा उसमें डालेंगे तो उसके अंदर जो है आपको अपना नाम फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और साथ इज वेरी सिक्योर तो आप उस पर पैसा डोनेट करें उस पर और उसके बाद जो है वो सामान हमें सुपर एशिया वाला यहाँ पर ऑफिस में हमारी जो वेयर हाउस है इसमें लाके हमें डिलीवर कर देंगे एंड देयर इज नो चार्ज फॉर डिलीवरी एंड ऑल द प्राइसेस दैट ही इज गिवन अस इज लेस देन 50% बिकॉज दे आर होलसेलर्स दे आर गिवन अस फॉर लेस देन 50% जी।
और मजीद भाई बड़ी बात है हम तो बस लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुपर एशिया वालों के आप ये ऐसे ईमेल पे आप अपने डोनेशंस दे दें लेकिन मैं उनकी भी सोच रही हूँ सुपर एशिया वालों की कि देखें उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है कितना कम कर दिया है बिल्कुल ही
नहीं प्रॉफिट नहीं उनका
हाँ जीरो अच्छा, कर दिया है एक रुपया नहीं कमा रहे
और उसके उन्होंने कॉस्ट से कम दिया हमको हाँ, जो कॉस्ट है उनकी
जी, जी,
तो उन्होंने कहा मेरा हिस्सा जाना चाहिए इसमें
ओ, या,
तो उन्होंने अपनी कॉस्ट जितने का जगह अगर उन्होंने $5 का खरीदा है वो चीज कॉस्ट उनको $5 की है तो $5 से लेके उन्होंने कम करके हमको दिया वो एक आइटम और वो जो है उसमें जो कम किया है वो उनकी अपनी डोनेशन उसके अंदर समझ लेंगे
oh
ना तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको बेइंतहा दिया है और जो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल 1199 का जो बैग आप चावल का बैग लेते हैं वो उन्होंने हमें $5 का दिया है
बिल्कुल अपनी कॉस्ट से भी नीचे तो माशाल्लाह بڑا جذبہ ہے جی, اور اللہ ان کو اور دے, اور ان سب کو جنہوں نے جو ہے اس نیک کام کے اندر حصہ ڈالا ہے. اچھا جی, ہم اپنی خبروں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو کیو ٹی ایل کے بارے میں بتائے, کوک ٹرک لیو کا کل ہے فائنلی ایونٹ ان کا جناب. اگر آپ ٹرک اونر ہیں تو آپ کل 2 سپٹمبر ہے, اپنے ٹرک کو وہاں پہ لے کے جائیں تو وہ آپ کو 75% آف دیں گے جب آپ اپنا آئل چینج کروائیں گے. اور وہاں پہ باربیکیو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کسٹمر اپریسیشن ڈے کل منا رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری وہ سروسز دیں گے, آپ اس کو بالکل مس نہیں کر سکتے. آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کے پاس تو بہت بڑا سارا ان کا جو ہے وہ ہائی وے 10 کے پاس ہے, جو ان کا 410 کے پاس ہے, ان کا جو ہے یہ سوری 401 ہائی وے 401 کے پاس ان کا ہے. اور ایگزٹ آپ نے وہاں سے لینا ہے 268, وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ 1010 انڈسٹریل روڈ جو ہے اس کے اوپر ان کا ہے یہ کوئک ٹرک لیو. تو آپ کل پلیز وہاں پہ ضرور جائیں, اور یہ جو سارے ایڈیشنل آفس دے رہے ہیں آپ کو اس کا آپ وہاں پہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا ماجد بھائی, کچھ تو ہمارے پاس کل کی خبریں ہیں, کچھ ہمارے پاس آج کی بھی خبریں ہیں, کیونکہ ہم مکس اینڈ میچ کر کے کریں گے. اور ہم آپ کو ایک بات ماجد بھائی, ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سیریس نہیں ہیں, یہ ٹیکے اور جو بوسٹرز ہیں آپ لوگ نہیں لگوا رہے, آپ کو کافی مشکلیں آ سکتی ہیں ٹریول میں. اور آج جیسے ماجد بھائی آپ نے سنا ہی ہوگا نا, ہیلتھ کینیڈا نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ہم اس کا موڈرنا کا ایک اور جو اومیکرون کے لیے جو بوسٹر ہے اس کو ہم نے انہوں نے اپروو کر دیا. تو پلیز آپ لوگ ضرور لگوائیں اپنے جو ہیں ٹیکے اور بوسٹر. اچھا جی, پہلی ہماری خبر جو ہے کل ہم نے آپ کو نہیں چونکہ سنا سکے تھے, تو چھوٹی سی ایک ٹروڈو صاحب نے کیبنٹ میں ری شفل, نہیں اس کو کہنا چاہیے, ذرا تھوڑی سی اپنی جو دو منسٹرز ہیں
شفل
ان کی, ہاں شفل کہہ سکتے ہیں ان کو, ان کی ذرا تھوڑی سی ذمہ داریاں کم کر دی ہیں بس, اور ان کو دوسرے کچھ چھوٹے پورٹ فولیوز دے دیے. تو ان میں سے جو دو ان کے جو ہیں, ایک تو فلومینا ٹاسی ہیں ان کی منسٹر, اور دوسری ہیں ہیلینا جیزک. اور یہ ان کو یہ جو تھے ان کو کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ ہمارے کافی جو ہیں گھر میں بہت مسائل ہیں, تو اس کے لیے جیسے کہ فلومینا ٹاسی نے کہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو جو ہیں دو سٹروکس آ چکے ہیں اور یہ بیلنس کرنا چاہتی ہیں اپنا کام اور گھر. تو یہ تھی منسٹر ریسپانسبل فار فیڈرل اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنسی, تو اس کے لیے اب ان کی جو ہے تھوڑی سی چینج کر دی گئی ہیں, اور ان کو ذرا تھوڑا سا کام کا ایسا دیا گیا ہے کہ جس میں کہ ان کے ٹریول جو بہت زیادہ انوالو تھا وہ نہ رہے. اور یہ کہتی ہیں کہ ہیملٹن کے ایریے سے یہ ہیں, تو یہ کہتی ہیں میں وہاں پہ اپنا کام کرتی رہوں گی. تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویکسینز کے بھی جو پروکیورمنٹس تھے ان کو بھی یہ دیکھ رہی تھی. تو ان کو اب ان کے ہسبینڈ کی اور فیملی کی جو ہے دیکھتے ہوئے کنڈیشن ان کا تھوڑا سا پورٹ فولیو چینج کر دیا گیا, اور یہ 2015 سے جو ہیں اس کے اندر ہیں پالیٹکس میں, تو کافی یہ ان کا لبرل گورنمنٹ کا مضبوط حصہ ہے. اسی طرح جو جیزک ہیں وہ 2019 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئی تھی مارکم سٹوف ویل سے, اور ایم پی پی تھی پریویسلی اوک رج مارکم سے. تو ان کو جو ہے منسٹر آف ہیلتھ اور لانگ ٹرم کیئر بنایا گیا تھا, لیکن اب ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے منسٹر اینڈ کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز کا پورٹ فولیو, تاکہ ان کا بھی بہت زیادہ کام نہ رہے, ان کے بھی اپنے پرسنل ریزنز ہیں کچھ کہ اس میں بہت زیادہ یہ انوالوڈ ہیں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی کام کرتی رہیں گی, خاص طور پہ جہاں جہاں کہیں اپرچونیٹی ہوئے گی کہ کینیڈا کو کلین انرجی کی طرف لے کے جایا جا سکے اس پہ یہ جو ہیں یہ کام کریں. اور 2021 میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن پھر سے ہوئے تھے, اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی چینج پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو ہے جینڈر بیلنس کیبنٹ رکھیں گے. تو یہ بڑی جو ہے امپورٹنٹ خبر تھی. اچھا جناب, ایک اور بہت جو امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم کل پھر نہیں شیئر کر سکے تھے, وہ آپ کو پتہ ہی, ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ الزبت مے جو ہیں انہوں نے فیڈرل لیول پہ جو گرین پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہ چھوڑ دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب میں جو ہے اس کو نہیں میں اب اس جگہ پہ رہنا چاہتی, لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں جی کہ اتنی زیادہ میں نے پارٹی کے اندر پرابلمز دیکھی ہیں کہ شی از کمنگ بیک ناؤ. الزبت مے جو ہیں شی از کمنگ بیک, اور یہ جوائنٹلی ٹکٹ جو ہیں رن کریں گی کر رہی ہیں جاناتھن پیڈ نالٹ کے ساتھ, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم میں دونوں میں سے جو بھی کوئی جیتے گا, جو جیتا نہیں ہے وہ اس کا ڈیپٹی پلے کرے گا, یعنی کہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوگا دوسرا ڈیپٹی لیڈر ہوئے گا. تو اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ کافی دفعہ جو ہیں کافی عرصے سے یہ ایسوسیٹڈ ہیں گرین پارٹی کے ساتھ, اور جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی پارٹی جس طرف جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں جن کو کہ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو گرین پارٹی کی فیڈرل ریس میں لوگ ہیں ان میں اور بھی جو لوگ ہیں وہ ہیں, ایک تو سارا گیبریل ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لڑی تھیں ایرن اوٹول صاحب کے اگینسٹ لاسٹ الیکشنز میں, اور پھر ایک ہیں سائمن گنوچی, یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کافی عرصے سے رہے ہیں اور گرینز کے لیے رن کرتے رہے ہیں ہل ایمر کے کیوبیک کے ایریا سے, اور این کینن ہیں اور چیڈ والکوٹ. اچھا ادھر یہ جو این کینن اور چیڈ والنٹ ہیں والکوٹ ہیں یہ بھی جوائنٹلی لڑ رہے ہیں ایک ٹکٹ پہ, اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا کہ جو جیتے گا جو دوسرا نہیں جیتے گا وہ پھر ان کا ایز اے ڈیپوٹی پلے کرے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ
سیم تھنگ لائک واٹ امریکن سٹائل
جی 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 بالکل پریزیڈنٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے یہ جو ایک ٹوسٹ لے کر آئے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو لوگ پارٹی کی ریس لیڈرشپ ریس جو ہوتی ہے وہ اکیلے اکیلے ہی لڑتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا. اچھا جی مینیٹوبا کی جو پریمیئر ہیں ہیدر سٹیونسن, انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی اور کاسٹ آف لیونگ بے تحاشا اوپر چلی گئی ہے, اس لیے ہم لوگوں کو کچھ جو ہے ریلیف دیں گے. اچھا ان کی جب یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے جو کہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ اناؤنس کیا ہے, تو اس کے اوپر این ڈی پی کے جو لیڈر ہیں ویب کنیو, انہوں نے بڑے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں لوگوں کو کوئی خرید رہی ہو تم لوگوں کے پیسوں سے, اور ہائیڈرو بلز پہلے تم نے اتنے زیادہ کر دیے, پھر تمہیں لگا کہ جی اب لوگ جو ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, لوگوں کی ابھی تک سرجریز نہیں ہوئی, ایمرجنسی رومز جو ہیں اس کے اندر ویٹ ٹائمز لانگ ہیں, اور جو لانگ ٹرم جو ہومز میں ہیں لوگ ان کا بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے بل, اور کاسٹ آف لیونگ اوپر چلی گئی ہے, تو اب تمہیں خیال آ رہا ہے یہ سارا کرنے کا. تو بہرحال جی یہ تو اپوزیشن کا کام ہے, لیکن انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پروونس ہے 87 ملین ایک تو سپینڈ کرے گا افورڈیبل پیکج جو ہے اس پہ, اس میں جو ہم ہاؤس ہولڈ جو کما رہا ہے 175,000 سے کم جس نے کمایا تھا 2021 میں اس کو ملیں گے $250 کے چیک, اور پہلے بچے کے لیے, اور 200 پھر ایچ ادر جو چائلڈ ہے اس کے لیے. 145,000 سے جو فیملیز کم کما رہی ہیں اور ان کے بھی جو بچے ہیں ان کو بھی بینیفٹس جو ہیں اس طرح کے سملر دیے جائیں گے. سینئرز جو کہ 40,000 سے کم کما رہے ہیں ان کو 2021 میں جو ہیں وہ دیے جائیں گے کچھ کریڈٹس, اور اسی طرح ایجوکیشن پراپرٹی جو ہے اس کے اندر دیے جائیں گے ٹیکس کریڈٹس اپ ٹو $300 کے اور ان کے بچوں کو, اور اسی طرح جو ای آئی ہے اس کی اماؤنٹ ریز کی جائے گی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وداؤٹ ڈیپینڈنٹ چلڈرن ہیں ان کو $50 ہم ایکسٹرا دیں گے ہر ایڈلٹ کو ایچ منتھ, اور ای آئی جو ہے اس کے اندر ایڈیشنل $25 پر ہاؤس ہولڈ پر منتھ جو ہے ہم ایڈ کریں گے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے سسکیچون میں $500 کا جو بل ہے وہ 18 اینڈ اولڈر جو ہیں ان کو بھیجے جائیں گے. تو اس طرح کی یہ ملی جلی کافی اناؤنسمنٹس کی ہیں. اب یہ دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے اس کا ایکسپینڈیچر جو ہے کافی اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. تو لوگوں کا کوشچن یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سسکیچون کے اندر پھر آپ جو ہے بجٹ کیسے بیلنس کر پائیں گے, تو یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا. ایسے ہے ڈاکٹر کائرون مور جو ہیں اونٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اونٹیریو کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں ایلیجیبلٹی COVID-19 کے جو ویکسینز اور بوسٹرز ہیں کہ بچے جو 5 years اینڈ ابو ہیں ان کو بھی اب یہ جو ہے یہ ٹیکہ لگایا جائے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیکے جو لگانے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اور بوسٹرز جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, آلریڈی ہم نے اویلیبل ان کو کیا ہوا ہے 12 to 27 تک, اور یہ آپ بکنگز لے سکتے ہیں اب آج سے, آج September 1 سے پروونشل ویکسینیشن کانٹیکٹ سینٹر سے, یا کہ آپ کال کر سکتے ہیں 1-833-943-3900 پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کے اسکول شروع ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو ہم بوسٹرز اور یہ ٹیکے سارے لگے ہوئے تاکہ جو آنے والے دن ہیں, کیونکہ خبر یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھے گی بیماری ابھی فال میں آتے ہوئے, تو اس میں بچوں کو جو ہے یہ سارے انجیکشنز لگے ہونے چاہیے, ویکسینز ان کی ہونی چاہیے.
مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اچھا اعلان کیا کہ جو 5-day مینڈیٹوری آئسولیشن
یہ بھی ختم کر رہے ہیں,
یہ بھی ختم کر رہے ہیں.
جی جی بالکل, یہ میری نیکسٹ خبر یہی تھی.
اچھا سوری, گو اہیڈ.
نہیں آپ بتائیں, آپ بتائیں.
تو یہ 24 hours جو آپ کو जब आप ठीक हो जाए मींस के जैसे अगर आप पॉजिटिव हैं और दूसरे दिन आप नेगेटिव हो गए तो यू डोंट हैव टू जस्ट 24 आवर्स का आपने रेस्ट करना है एंड बट यू मस्ट वेयर
मास्क
फॉर 10 डेज.
जी बिल्कुल. तो ये भी उन्होंने कहा है जी कि ये जो आप रैपिड पीसीआर टेस्ट करते हैं और ये जो आप का करवाते हैं आप अपना जब आपको लगता है ऐसे कोई फीलिंग आती है कि आपको है तो इसकी अब कोई ज्यादा ऐसा जरूरत नहीं है और बस एडिशनल आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है. और वो कहते हैं कि खासतौर पर जो बच्चे हैं अगर उनका है तो उनको जरा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है. लेकिन वो भी उसमें भी उन्होंने कहा है कि बच्चे अगर किसी को हो जाता है तो मास्क वैसे हम तो कहते हैं कि वो पहने लेकिन अगर कोई जो है लोग या बच्चे मास्क नहीं भी पहनना चाहते हैं तो दैट्स ओके.
मगर ये है ना कि क्योंकि सितंबर के एंड में फ्लू सीजन शुरू
हुआ है. जी जी जी.
तो अब एवरीबॉडी हुज गॉट अ फ्लू विल बी थिंकिंग दैट आई हैव गॉट
कोविड
या कोविड.
जी जी.
तो इसलिए उन्होंने कहा कि नॉट हैज टू बी
मैंडेटरी
नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी. आप आराम से अपना छड़ो परे चैन से जियो.
आहो आहो बिल्कुल. ओ माय गॉड आई रिमेम्बर इन दिसंबर लास्ट ईयर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई 14 घंटे का सफर एंड वी वर कॉन्स्टेंटली वेयरिंग द मास्क. वो 10 मिनट का जो खाना बस आता था उसके लिए मास्क उतारते थे. इट वाज सच अ पेन. आई टोल्ड माय ब्रदर आई सेड
एवरीबॉडी इज गॉन थ्रू दोस 2.5 years मैन दैट वाज
इट हैज बिकम सच अ पेन नाउ.
अपनी लाइफ से 2.5 years की एज कम कर लें.
बिल्कुल बिल्कुल.
हाँ जी
हाँ जी. तो आप 16 के थे मतलब है आप 13.5 हो गए.
13.5 हो गए.
ओ माय गॉड.
बैकवर्ड.
अच्छा बैक टू फ्यूचर. अच्छा जी ठीक है. अच्छा जी ऑन्टेरियो पीसी गवर्नमेंट जो है वो अब कह रही है जी हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और हम जो खासतौर पे हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और जो है आपको पता ही है कि 2 दिन पहले फोर्ड साहब की जो प्रीमियर है ऑन्टेरियो के उनकी मुलाकात हुई थी जस्टिन ट्रूडो के साहब और माजिद भाई ने और मैंने यही कहा था कि हेल्थ केयर सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसमें कि वही बात थी कि उन्होंने कहा कि जी हेल्थ केयर सबसे बड़ा मुद्दा है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं. तो अब उन्होंने एक उसका हल निकाला है जी. और ये हल जो है इनकी जो मिनिस्टर हैं सिल्विया जोन्स और जो हैं लॉन्ग टर्म केयर मिनिस्टर पॉल क्लैंट्रा और यहां पे जो थे कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स भी थे और ये डकफोर्ड साहब भी थे. इन्होंने कहा है जी कि पेशेंट्स जिनको के जरूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटल का वेट कर रहे हैं तो उनको उधर ही जगह मिले या जिस ये लॉन्ग टर्म केयर नर्सिंग होम में जाना चाहते हैं वहीं पे ये जाएं. इनको हम किसी और जगह पे भी टेम्पररी बेसिस पे शिफ्ट कर सकते हैं. अच्छा इसमें इन्होंने ये कहा जी कि ये इसमें हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है वो ईज होएगा क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमने ये जो बिल लाया है बिल 7 ये अब क्विकली हेल्थ केयर का जो क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व करेगा. अच्छा इनको लोगों ने कहा जी कि ये तो $1800 पर डे जो है इस तरह देना पड़ता है अगर आप जाके गवर्नमेंट के ना होके और किसी और प्राइवेटली अगर आप जाके अपने पेशेंट्स को रखते हैं. तो इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने कोई खास जवाब नहीं दिया ऑन्टेरियो की लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन फोर्ड साहब ने वैसे कहा है कि $1800 इज रिडिकुलस प्राइस. हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइस भी हम अनाउंस कर दें. तो इससे लग रहा है कि 6000 पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में थे वो अब अल्टरनेटिव जो केयर है यानी कि नर्सिंग होम्स जो हैं उसमें जा सकते हैं.
बेड्स चाहिए.
हाँ ना बिल्कुल. तो उस पे इनके ऊपर हॉस्पिटल्स जो हैं उसके ऊपर जरा हौले हौले आते आते बर्डन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. और वो कहते हैं जी हॉस्पिटल्स लेकिन जो अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि हमको रहना है तो फिर $62 पर डे फिर आपको पे करना पड़ेगा. तो मेरा ख्याल में लोग हॉस्पिटल में ही रहना पसंद करेंगे क्योंकि $1800 पर डे तो बहुत ही ज्यादा है अगर आप प्राइवेट किसी नर्सिंग होम में या के लॉन्ग टर्म केयर में इस सूरत में जा रहे हैं. तो बहरहाल जी ये उन्होंने कहा है. तो उन्होंने कहा जी कि अब ये आप फिर खुद देख लें और डिसाइड करें. तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या होता है. तो बहरहाल कुछ लोगों के लिए तो $62 पर डे भी देना मुश्किल होएगा. तो अब देखेंगे कैसे होता है. अच्छा जनाब डकफोर्ड साहब की ये जो मुलाकात हुई थी इसके अंदर जो हमने आपको बताया था 2 दिन पहले तो उसके अंदर इन्होंने जो मेन बात हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेन बात वही थी हेल्थ केयर की थी और हाउसिंग की थी. तो इसके अंदर बेसिकली डकफोर्ड साहब ने ट्रूडो साहब को कहा था कि हम 1.5 मिलियन होम्स जो हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स बनाने के लिए हैं लेकिन हमें हाउसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. हेल्थ केयर तो ऑलरेडी इन्होंने डिस्कस किया ही था लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं है। अच्छा, इस पे अब जब ये सारी बात सामने आई है डकफोर्ड साहब की और ट्रूडो साहब की, तो वही बात है कि लोगों के अब इसके ऊपर कमेंट्स आने लगे हैं कि जी डकफोर्ड साहब ने इनको कहा है कि जी इमिग्रेशन और खोलो क्योंकि ऑन्टेरियो के अंदर हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, लेबर नहीं है। और ये जो और भी इन्होंने ये जो चीजें डिस्कस की थी, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है, और ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज जो कि अब बनने लगी ऑन्टेरियो में, ये सारी चीजें, तो उसके ऊपर लोगों ने कहा जी कि आप बार बार कह रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो हैं और मंगवाएं, बजाय इसके कि अभी आप और लोगों को बुला रहे हैं जो लोग ऑलरेडी आपके मुल्क में हैं, उनको ही आप क्यों नहीं हंट कर रहे, उनको ही क्यों नहीं आप हायर कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी घरों में बैठे हुए हैं ये देख के जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बेतहाशा ऊपर चली गई है, गैस की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है और तनख्वाहें कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर वही जो हमने कोई 50 दफा यहां पे अनाउंस किया है कि जी $15 पर आवर है, अगर आप एजेंसी के थ्रू या वैसे भी जा रहे हैं वो कट कटा के आपको $11 पर आवर या $12 पर आवर मिलता है, तो $12 पर आवर में अगर आप 8 घंटे का काम कर रहे हैं तो आपका घर कैसे चलेगा। तो वो लोगों ने फिर से इनको एक दफा सुझाव दिया है कि भाई आप लोग अपनी कंपनीज को, खुद गवर्नमेंट भी जरा थोड़ा सा बेनिफिट्स बढ़ाएं, तनख्वाहें बढ़ाएं, ताकि जो ऑलरेडी लोग यहां पे बैठे हुए हैं उनकी आप हेल्प करें, बजाय इसके कि आप फेडरल गवर्नमेंट को और कह रहे हैं कि जी और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। और की तो अभी जरूरत नहीं है मुल्क के अंदर, क्योंकि जो बैठे हुए हैं उन्हीं के पास जॉब्स नहीं है, तो औरों को बुला के आप और इतना क्यों ओवरबर्डन इकोनॉमी को कर रहे हैं। बहरहाल जी, ये इनकी बातें हुई हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा एतराज भी आया है। स्टैट्स कनाडा की जनाब आज खबर आई है, कल आई थी वैसे तो शाम को, और उसके अंदर यह कहा गया है कि इकोनॉमी जो है बड़ी हैरत की बात है कि सेकेंड क्वार्टर में 3.3% से ग्रो की है। उसकी वजह आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए थे और फिर जो बिजनेसेस और हाउस होल्ड स्पेंडिंग थी उसकी वजह से काफी बढ़ गई थी, और उसकी वजह से जो GDP है वो 0.8% ग्रो किया है सेकेंड क्वार्टर के अंदर। और जो इकोनॉमी थी काफी फ्लैट चल रही थी मई में, लेकिन फिर जून में इसने थोड़ी ग्रोथ दिखाई थी 0.1% की, और जुलाई में फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन अब जो है ये फिर थोड़ी सी ऊपर चली गई है जैसे कि हमने आपको बताया। तो इसके अंदर बेसिकली जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कुछ की थी जो प्राइवेट सेक्टर में थे, इंजीनियरिंग में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, और कुछ लोग जब, क्योंकि अब शॉपिंग वगैरह करना बहुत आसान हो गया था और समर में लोग भी बाहर से कुछ आए थे यहां पे, तो क्लोदिंग और फुटवेयर यहां पे लोगों ने काफी खरीदा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी उछाल देखा गया है यहां पे। लेकिन हाउसिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी नीचे है वो सेकेंड क्वार्टर में, तो उसमें ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं आई ऐसे।
मगर अभी अगर ये सितंबर 7th को आई थिंक इज द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, अगर बैंक ऑफ कनाडा फिर अगर रेस करता है
ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स बढ़ाएंगे, मुझे तो यही लग रहा है
0.75, माय प्रेडिक्शन इज 0.75, अगर 0.75 अगर बढ़ाते हैं वो तो उससे और भी हालात बिगड़ सकते हैं।
तो आप देखें जरा माजिद भाई कि जापान में कितने बिगड़े हों, साउथ कोरिया में कितने बिगड़े हुए हैं कि 2% से उन्होंने बढ़ाया। कैन यू इमेजिन?
यस,
2%, और फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी लेविश वहां पे इनकी ये जो है, क्योंकि बड़े रिच हैं साउथ कोरियंस, इनका वो स्टाइल है, लेकिन ये अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर रहे हैं सारी।
एग्जैक्टली,
तो मतलब हालत काफी खराब है। अच्छा जनाब, कनाडा के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रायन मुलरूनी, उन्होंने जनाब बड़ा याद किया है मिखाइल गॉर्बाचोफ को और बड़ा उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं, ये जो लास्ट सोवियत लीडर थे मिखाइल गॉर्बाचोफ, जिन्होंने के काफी जो है ओपननेस, जिसको कि ग्लासनॉट कहते हैं, वो जो लेकर ओपननेस आए थे, वो वर्ल्ड स्टेज पे उनको काफी किया जाएगा, मिस किया जाएगा। तो उन्होंने गॉर्बाचोफ को कहा जी कि बहुत ड्रामेटिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उनकी वजह से जो बर्लिन वॉल थी वो गिरी थी 1989 में, और इनकी हॉस्पिटल में, मॉस्को के हॉस्पिटल में 2 दिन पहले डेथ हुई थी 91 ईयर्स की एज में, और 770 ने सबसे पहले ये जो थी खबर यहां पे ब्रेक की थी इनकी डेथ की। तो ब्रायन मुलरूनी साहब ने कुछ इंटरव्यूज देते हुए अपने कुछ जो इनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं गॉर्बाचोफ के साथ उनको किए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं यूएस प्रेसिडेंट जो रोनाल्ड रीगन थे उनके साथ मैं बात कर रहा था, और जिस वक्त ये आए थे हमें मिलने के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि उन्होंने, लोग दुनिया उनको बड़ी क्रेडिट देती थी कि जी कोल्ड वॉर को इन्होंने खत्म किया, तो मैंने रीगन साहब को बड़ा क्लियरली बताया था इट takes two to tango, मतलब एक आपकी वजह से नहीं, उनकी तरफ से भी जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई थी. और ये कहते हैं मेरी मुलाकात इनके साथ 1985 में आई थी, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे, अदर देन जो हम आज तक जिन सोवियत लीडर से मिले थे बिल्कुल विजनरी नहीं होते थे, बड़े स्टिफ होते थे, तो ये जो थे ये बड़े चार्मिंग थे, डायरेक्ट थे, अलर्ट थे. तो मैंने रीगन साहब को भी यही बताया जब वो क्यूबेक सिटी में आए, तो मैंने उनसे कहा कि जी ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का लीडर है, और ये वो उस तरह का लीडर है कि जिसके साथ हम मिलके बैठ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं. तो बहुत दिनों ने आज इनको याद किया और इनके बारे में जो है बहुत अच्छी बातें भी की हैं. एंड जनाब, रशियन गॉसप्रॉम जो है उसने फाइनली कल रात कहा कि जी हम बिल्कुल कंप्लीटली अपनी गैस जो है नॉर्थ स्ट्रीम वन की, आपको बताइए कि दो पाइपलाइंस हैं नॉर्थ स्ट्रीम वन एंड टू जो कि यूरोप में जाती हैं, नॉर्थ स्ट्रीम वन को कंप्लीटली हम शट डाउन कर रहे हैं, कोई गैस अब जर्मनी को नहीं दे रहे हैं. उसकी वजह से जर्मनी जो है उसकी काफी हालत खराब होती नजर आ रही है, लेकिन जर्मनी ने कुछ इतने ज्यादा अपने हालात खराब होने का जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा जी नहीं, अभी हमारे पास इनफ है, हम कुछ दिन और चल सकते हैं. आपको पता ही है कि यूरोप का जो ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस है वो 400% जो है होलसेल गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है विंटर्स में जो यूरोपियन यूनियन है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि यहां पे जो घर वर जो है उनको जो है वो चाहिए होती है नेचुरल गैस हीटिंग के लिए, तो वो इनको नहीं मिलेगी. जाहिर है कि जर्मनी ने बहुत एतराज किया है रशिया के ऊपर, ये कहा है उनको कि जी ये कौन ये हमारे लिए जो है ये इसको यूज कर रहा है गैस को एज अ वेपन, लेकिन रशिया कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि नहीं, वो जो कंप्रेसर यूनिट है उसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है और वो काम नहीं अभी ठीक हुआ, तो इसलिए ये इसको हम बंद कर रहे हैं. आज हम जनाब आपके साथ एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट है जो कि सबसे पहले ये की थी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स एंड बीबीसी और इन लोगों ने, तो ये स्पेशल रिपोर्ट जो है ये एक स्पाई के ऊपर है. वो क्या स्टोरी है, उसका कनाडा के साथ क्या ताल्लुक है, और आज हमारी ये वो स्पेशल रिपोर्ट क्यों है, वो स्पाई क्यों काम कर रहा था कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए, कनेडियन इंटेलिजेंस उसको क्यों यूज कर रही थी, किसके अगेंस्ट यूज कर रही थी, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी है स्पेशल रिपोर्ट में जो हम आपके साथ जो है वो करेंगे. लेकिन हम अपनी पूरी खबरें जो हैं वो करने के बाद आपके साथ ये करेंगे. इमरान खान साहब की जो एक्स वाइफ हैं जमायमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने आज कहा है कि जी जो जमात इस्लामी का अल खिदमत फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, और जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं पाकिस्तान के उनके तमाम जो डोनेशंस हैं अगर आप देना चाहते हैं तो आप इनको दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये जिस तरह का रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं इफेक्टेड एरियाज में, तो मैं सारों को अर्ज करता हूं कि वो मैं सारों को अर्ज करती हूं कि वो जो है इनके थ्रू अपने डोनेशंस पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए दें. इसके अलावा ब्रिटेन की जो शैडो कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एमपी प्रीत कौर गिल, उन्होंने जो है अपनी यूके की गवर्नमेंट को कहा है कि पाकिस्तान में जो ये कैटास्ट्रॉफी चल रही है उसका आपको ख्याल करना चाहिए, और आपको ये जो आप एड दे रहे हैं 1.5 मिलियन पाउंड्स की, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है. आज इन्होंने एक लेटर लिखा है यूके की फॉरेन सेक्रेटरी मैरी एलिजाबेथ ट्रस को, और उनको कहा है कि ये जो आप प्लेज कर रहे हैं 1.5 मिलियन पाउंड्स ये बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वो 160 मिलियन डॉलर्स मांग रहा है, और इसमें यूके का हिस्सा सिर्फ 1% है, और पाकिस्तान हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हमारे पास यहां पे उनके लोग हैं, उनके रिलेटिव्स बैक होम हैं, तो ये जो हमको उनको जो स्केल ऑफ चैलेंजेस हैं वो बहुत हाई हैं, तो हमको उनका ख्याल करना चाहिए. तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट को मैं कहती हूं कि इनको इंक्रीज करें आप ये जो एड है पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए. तो ये आज बड़ी खबर रही वहां पे इंग्लैंड में. न्यूयॉर्क के अंदर जी न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी वाले जो हैं उन्होंने अब सुख का सांस लिया है, क्योंकि पेंडेमिक के रहते हुए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके ऊपर जो हैं वो डेट्स चढ़ गए हुए थे. तो ये न्यूयॉर्क टैक्सी वर्कर्स अलायंस एंड टैक्सी मेडालियन लेंडर मारबरी गेट एसेट मैनेजमेंट जो हैं उन्होंने कहा है जी कि अब हम एक रिलीफ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम लोन्स देंगे 3,000 ड्राइवर्स को जो के ऑन एवरेज ओन करते हैं 550,000 यूएस डॉलर्स. तो इसको जो है अब रीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं और इसको हम नीचे ला रहे हैं, तो इसलिए जो 30,000 जो इसमें से ग्रांट है वो कवर की जाएगी और बैलेंस जो है वो सिटी बैक्ड गारंटी जो है उसमें इसको एडजस्ट किया जाएगा, जिसका के मतलब है कि ड्राइवर्स जो हैं अब अपना घर वर और जो डिफॉल्ट कर जाते थे और घर को लूज करने का उनके पास वो होता था कि वो कर जाएंगे, तो अब वो खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा सिटी ऑफिशियल्स और टैक्सी अलायंस और मार्बल गेट के बीच में एक अग्रीमेंट भी हो गया है, और ये जो था वैसे तो साइन हुआ था नवंबर 2021 में, लेकिन अब ये जो है पूरा फुल फ्लेज इसको पूरी इसकी टर्म्स पूरी की गई हैं, तो उसमें अब कहा जा रहा है कि ये इनको लोन्स जो हैं उनकी रीफाइनेंसिंग शुरू की जाएगी सितंबर 19 से। तो इन्होंने आज बड़ा सुख का सांस लिया है। AFP जो है जी उसने अब की तरफ से एक खबर आई थी तालिबान के बारे में, AFP की ये खबर है और वो कह रहे हैं कि कल तालिबान ने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई है काबुल के अंदर के हमारी जान छूटी जो फॉरन यहां पर ट्रुप्स थे उनसे। इनके गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्ला मुजाहिद साहब ने उन्होंने कहा है कि हम आज अमेरिकन ऑक्यूपेशन से फ्रीडम जो है वो मनाते हैं, और इसमें जो हमारी फाइट थी इनके अगेंस्ट उसमें बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हुए, औरतें विडो हुई और जो है लेकिन फिर भी हमको आज़ादी मिली है। और ये जो सेलिब्रेशंस थी ये बगराम के एयर बेस पे थी जहां पे कि यूएस फोर्सेस जो हैं तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करते थे, तो इसको एक एज अ सिंबल यूज किया गया है। और मीडिया को जो है आने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए कुछ ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं है इस इवेंट की। और वो कहते हैं जी कि हम बड़े खुश हैं कि फाइनली हमने इन फिडल्स जो हैं इनसे अपनी कंट्री का जान छुड़ाया और इस्लामिक एमिरेट जो एस्टैब्लिश की है, लेकिन काबुल जो था वो मोस्टली क्वाइट देखा गया है और सिर्फ तालिबान के कुछ फाइटर्स जो थे वो उधर इलाके में घूम रहे थे और जो रेजिडेंट्स थे वो घर के अंदर ही रहे। इसके अलावा जनाब NDTV ने आज रिपोर्ट किया है कि झारखंड पुलिस ने बीजेपी के एक लीडर जो हैं सीमा बत्रा उनकी वाइफ जो हैं जो सीमा बत्रा ये जो वाइफ हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर की उनको अरेस्ट किया है। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया था उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प सुनीता थी 29 ईयर्स एज है आदिवासी औरत है, और वो कहती है कि इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और मेरे पे बहुत जुल्म किए, मुझे अपने घर में कैप्टिव बना के रखा और मुझे जो है आयरन रॉड्स और लोहे के बर्तन थे उनसे मुझे मारा पीटा और मुझे कहते थे यूरिन लिक करने को और जो मेरे दांत थे वो इन्होंने तोड़ दिए, इतना मेरे पे जुल्म करते थे। तो ये सारी जब इसने वीडियो बना के अपलोड की तो ये बहुत ज्यादा वायरल होगी, जब वायरल हुई तो फिर जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये बीजेपी की लीडर है सीमा बत्रा इनको फिर उन्होंने पकड़ा है। PTI की न्यूज है एंड दिस PTI इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस न्यूज के मुताबिक दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत कल से मुजाहरे कर रही हैं क्योंकि वो चाहते हैं अरेस्ट शिवा मूर्ति मुरुगन शरणारू का, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इनको पकड़ना चाहिए क्योंकि इनको पहले भी एक दो दफा इनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो थे जो हाई स्कूल की दो बच्चियां थी उनका था। अच्छा उस वक्त वो बच्चियां जो थी वो सामने नहीं आई थी और अब वो सामने आई हैं, तो अब उसके बारे में कहा जा रहा है जी कि ये इन्होंने इनके साथ गॉड की तरह ये बिहेव करते थे और ये इन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया इन बच्चियों को। तो इन्वेस्टिगेशन तो बिठाई हुई थी लेकिन उनकी कुछ जो चीजें हैं वो अब सामने आई हैं तो उसको देते हुए। अच्छा ये जो हैं शिवा मूर्ति साहब हैं ये कह रहे हैं कि नहीं ये कोई इनसाइडर्स जॉब है, जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्होंने ये मेरे खिलाफ किया सारा कुछ, तो मैं बिल्कुल सामने आऊंगा और क्लीन होके आऊंगा और मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मगल आया कि जो बीजेपी हैं VP बर्नर्ड मरक जो हैं उनको भी अब अरेस्ट किया गया है दो केसेस में, और पहले तो इनके ऊपर इल्जाम था कि ये एक ब्रॉथल को रन करते हैं और लेकिन उसमें कुछ नहीं थे इनके पास इन्वेस्टिगेशन पूरी तो इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब इनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि इनके बारे में खबर आई है कि इन्होंने जानबूझ के जो फूड प्राइसेस हैं उनको हाई करने के लिए जैसे कि स्नैक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स और मीट उसमें तूरा के एरिया में ज्यादा करने को कहा था और उसके लिए इन्होंने लोगों को कहा था कि तुम मुझे पैसे दो अलेजली, तो उसके लिए बहुत इन्होंने ह्यूज अमाउंट्स अलेजली शॉपकीपर्स जो थे उनसे वसूल की थी और कहा था कि ये मेंबरशिप फी है जो कि हमारी बीजेपी की जो पार्टी है उसको चाहिए होती है। तो इसमें कहा गया इन्वेस्टिगेशन में कि इन्होंने बहुत आर्म ट्विस्टिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स यूज किए हैं प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए, तो अब इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है और इनको अरेस्ट भी किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी मुफ्ता इस्माइल साहब, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कल कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या चीज़ें जो हैं वो इंडिया से मंगवाई जाएंगी, तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी हाँ, हमारे पास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये आई हैं चीज़ें कि जी आप वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया से चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हैं चीज़ें जैसे कि टोमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं और वेजिटेबल्स हैं, अंडे हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं क्योंकि फ्लड्स ने क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल ये इम्पोर्ट्स जो हैं इंडिया से अलाउ नहीं कर सकते जब तक कि हिंदुस्तान जो है हमारे साथ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के मसले पे बैठ के बात नहीं करेगा। और मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा जी कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो हमारे से बात कर रही हैं और वो भी कह रही हैं हिंदुस्तान से लेने के लिए, लेकिन हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा है कि हम चीज़ें जो हैं अनियंस, टोमेटोज और वेजिटेबल्स अफगानिस्तान और ईरान से खरीदेंगे। तो जनाब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो मुल्क अफगानिस्तान को फीड करता था आज अफगानिस्तान से सब्जियां खरीदेगा। माशाल्लाह क्या जबरदस्त पॉलिसीज हैं हमारे मुल्क में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अथर मिलना, उन्होंने जनाब कल जब इमरान खान साहब अदालत में आए तो उनको बहुत ज्यादा ग्रिल किया, और वैसे तो इनके बारे में खबर आई थी कि इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, तो इनके इर्द गिर्द बेशुमार सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी को बड़ा टाइट रखा गया था, और सिर्फ जिन लोगों को पासिस दिए गए थे वही उस एरिए में एंटर हो सकते थे जहां पे कि इमरान खान साहब आए थे, तो एंट्री गेट जो था वो उस पर काफ़ी पुलिस थी और उनके साथ भी थी। इमरान खान साहब के जो काउंसलर हैं, लॉयर हैं जो हमीद खान साहब, उन्होंने कोर्ट को कहा कि भई ये जो खान साहब ने रिटन अपना सबमिशन दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उसको कंसिडर करना चाहिए, जिसके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े ही डिसप्लेजर का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत बड़े लीडर हैं और इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे तो कैसे चलेगा, और ये जिस तरह से ये बात करते हैं इनका बात करने का तरीका भी ठीक नहीं है, और अभी के लिए तो हम इनको बेल दे रहे हैं लेकिन इनको अपना रवैया जो है उस पर देखने की जरूरत है, और इनको शायद अभी तक ये फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो इनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि इनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, तो अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो ये गलत है। और इनको ये भी कहा गया इमरान खान साहब को कि भई आपने जो वो हैं फीमेल जज ज़ेबा चौधरी, उनके बारे में जो बात किया तो उन्होंने कहा जी कि वैसे तो ज़ेबा चौधरी साहब के लिए मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर उनको बुरा लगा है तो ठीक है, आप अगर समझते हैं तो मैं उसके लिए जो है आइंदा मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो कोर्ट जो है उसको पसंद नहीं आई उनकी ये बात, उन्होंने कहा कि नहीं आपको ज़रा और क्लियर जो है आके सामने बात करनी चाहिए। आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज आई है जी और उन्होंने कहा है कि 6 सितंबर को, आपको पता ही है कि पाकिस्तान डिफेंस डे मनाता है, 1965 की वॉर में जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स ने जो अपनी सेक्रीफाइसेस दी थी उसको मनाने के लिए, तो इस दफा आईएसपीआर कह रहा है कि जो जनरल हेडक्वार्टर्स जो है रावलपिंडी में वहां पर अब हम नहीं मनाएंगे ये फ्लड के होते हुए, क्योंकि फ्लड्स आए हुए हैं सारी दुनिया में, और इन्होंने आईएसपीआर ने कहा जी कि आर्म्ड फोर्सेज जो है फ्लड में जो लोग फंस गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए उनको सर्व करते रहेंगे। 140 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो हैं वो दी गई हैं, 550 स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल्स जो हैं उनको डिफरेंट इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने अभी तक 29 टन्स ऑफ रिलीफ आइटम, 6140 राशन पैकेट्स, 325 टेंट्स इन द लास्ट 24 आवर्स दिए हैं, 224 रिलीफ आइटम्स जो हैं वो उसके कलेक्शन पॉइंट्स हमने बनाए हैं, और 5213 पेशेंट्स जो हैं उनको आर्मी के मेडिकल कैंप्स के अंदर ट्रीट किया जा रहा है। तो आर्मी इज स्टैंडिंग विद पीपल इन दिस डिफिकल्ट टाइम और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये उन्होंने उस वक्त ये सारी बातें आई सामने आईएसपीआर की जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो WHO ने ही कहा है कि हम एक इमरजेंसी अनाउंस करने लगे हैं पाकिस्तान के लिए, इतने हालात वहां पे खराब हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड था उसने कहा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सैलाब हैं उसके अंदर डेंगी, डायरिया, मलेरिया बहुत ज्यादा फैल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात का जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 650,000 प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हैं, हैं तो प्रेगनेंसीज तो रुक नहीं सकती हैं, तो बच्चे तो डिलीवर उन्होंने करने ही हैं, और 73,000 जो हैं वो तो नेक्स्ट मंथ में ही डिलीवरीज जो है एक्सपेक्टेड हैं, तो उसके लिए हमको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स चाहिए हैं और केयर चाहिए और सपोर्ट चाहिए, और इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है 1 मिलियन होम्स क्योंकि जो डैमेज हो गए हैं उसमें हमें लगता है कि शायद बढ़ सकती है। और उन्होंने कहा जी कि 64 मिलियन के जो करीब लोग हैं वो अफेक्टेड हैं, हालांकि 33 मिलियन की आज नई रिवाइज्ड वो आई है फिगर, और उसमें वो कह रहे हैं जी 1.6 मिलियन जो हैं वो औरतें हैं चाइल्ड बेयरिंग एज में, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि प्रेगनेंसीज जो हैं वो तो इमरजेंसीज देख के ना आती हैं, ना उनको बच्चों को डिलीवर ना किया जाए ये देख के कि जी इमरजेंसी ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो 1000 हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं पार्शली या के फुली सिंध में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, 198 हेल्थ फैसिलिटीज इन बलूचिस्तान में बर्बाद हो गई हैं, और इसके अलावा उन्होंने औरतों का जो दूसरा मसला है मेंस्ट्रुएशन जो उनकी है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि औरतों को बहुत ज़्यादा मसला है। आपको पता ही है कि ये बड़ा एक टैबू इशू है, और इसके लिए बहुत सारी अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में लोकल भी जो पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा जी कि जैसे बच्चे पैदा होने नहीं रुक सकते इमरजेंसीज में, वैसे ही जो मेंस्ट्रुअल नीड्स हैं औरतों की वो भी नहीं रुक सकती, तो उसके लिए भी हमें सिर्फ कपड़े या खाना नहीं देना, हमको वो जो सैनिटरी के जो आइटम्स हैं वो भी। तो उसके लिए बहुत सारी अब एनजीओज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि सैनिटरी पैड्स और जो है बहुत सारे और साबुन और इस तरह की चीज़ें जमा करके इधर अफेक्टेड एरियाज में भेज रही हैं। तो ये मतलब पहली बार बड़ा सोच समझ के काम किया जा रहा है, हर चीज को सेक्टर को देखा जा रहा है, प्रेगनेंसीज देखी जा रही हैं, औरतों के मेंस्ट्रुअल जो है वो नीड्स वो भी देखी जाती है, एवरी नथिंग इज टैबू एनी मोर नाउ, क्योंकि ये नीड्स जो है वो तो रुक नहीं सकती ना आपकी। तो ये जो बच्चियां थी, बल्कि इनके कुछ इंटरव्यू कल मैं देख रही थी चल रहे थे, और मुल्तान के कुछ ट्रांसजेंडर कुछ थे लोग जो थे वो भी कह रहे थे कि हम भी इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि जब लास्ट टाइम इस तरह के अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आए थे तो उसमें बेचारी औरतें जो थी वो पत्ते रख रही थी तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो वो उसमें उन्होंने कहा जी हम सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल हो सकती है, तो दैट्स व्हाई दे वो कहती है जी हमें काफी चैलेंजेस तो आए लेकिन आई मीन व्हाट टू डू, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस इज सेइंग कि प्रेगनेंसीज नहीं रुक सकती, बच्चे डिलीवर करना हम नहीं रोक सकते, वैसे मेंस्ट्रुएशन नहीं आप रोक सकते।
Exactly.
तो ये औरतों की सब नीड्स हैं और ये उनको देनी ही पड़ेगी, तो दे आर नाउ वर्किंग एट अ वेरी गुड पेस। अच्छा जनाब, माइकल जैक्सन साहब की जो कैरलवुड स्टेट है उसका काफी दिनों से जो है, काफी अरसे से बल्कि सालों से एक लीगल बैटल चल रही थी जेफरे विलियम फिलिप्स के साथ, क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम था कि जेफरे फिलिप्स जो कि इनकी जो बहन के साथ जो है वो ब्याया हुए हैं लाटोया जैक्सन के साथ, उनके बारे में था कि ये कुछ अरसे के लिए आके रहे थे इनके घर पे यहां पे एस्टेट में कैरलवुड में, और इन्होंने माइकल जैक्सन की बेशुमार चीजें जो थी 9 डेज में चोरी की थी, जिसमें कि उनका आईफोन था, उनका ड्राइवर्स लाइसेंस था कैलिफोर्निया का, थ्रिलन सॉन्ग की जो हैंड रिटन नोट्स थी वो थी, और प्रिस्क्रिप्शन पिल की जो बॉटल्स थी, क्लोथिंग थे। तो ये सारी चीजों के बारे में कैरलवुड स्टेट ने कहा कि ये इसको बिलोंग नहीं करती हैं और ये इसको वापस करनी चाहिए। तो बहरहाल इनका जो फर्स्ट स्टेज था वो उसमें जीत लिया है, और जज ने उनको कहा है कि जी ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जेफरे वापस करें, और ये इनको बेच तो बिल्कुल ही नहीं सकते हैं जो कि उन्होंने जो माइकल जैक्सन के घर से 2009 में उठाई थी। तो अब ये फर्स्ट स्टेप है, और अब जो है माइकल जैक्सन की जो स्टेट के काउंसिल्स हैं उनको लगता है कि नेक्स्ट स्टेट में, अब देखें जरा लोग चोरी कर रहे हैं चीजें, आई मीन इमेजिन एक बंदा मर रहा है तुम उसकी चीजें चोरी करें और ब्याह हुए उसके बहन के साथ, राइट, इमेजिन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है जी इंडिया में, उन्होंने अब एक चार्ज शीट फाइल की है जैकलिन फर्नांडिस के अगेंस्ट। आपको पता ही है कि बहुत अरसे से जैकलिन फर्नांडिस को वो कर रहे थे कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर के, वो जो उसने 200 करोड़ जो एक्सट्रॉशन केस है उसके अगेंस्ट, उसके अंदर जिसमें के कहा गया था कि ये जो सुकेश चंद्रशेखर है इसने बड़े एक्सपेंसिव इसको गिफ्ट्स दिए, और जैकलिन फर्नांडिस कहती थी कि ये मुझे पता नहीं था कि ये कौन मैन है। ईडी ने आज कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा है कि नहीं, इसको पता था बहुत अच्छे से, ना सिर्फ इसने बल्कि इसकी फैमिली ने भी इसके पैसे का और इसके इन्फ्लुएंस का जो है फायदा उठाया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए इसको जो है आपको पता ही है पिछले दिनों में काफी दफा क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया था, और उन्होंने कहा जी कि इसके पास जो कुछ भी है वो आएगा अंडर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि इसका क्रिमिनल पैसा था और ये जो जितने भी वैल्यूएबल गिफ्ट्स इसको मिले हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंडर आते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो चीजें भी एक तो वापस करनी पड़ेंगी, और नाले इसको जो है वो हम शामिल भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी बनाएंगे। तो सुकेश चंद्रशेखर जो है वो तो है जेल में, और अब इस लड़की का बेचारी का بڑی حسین خاتون ہے, اس کا کیا فیوچر ہے آپ بتائیں گے. اچھا جناب, کافی ود کرن کا سیزن 7 جو تھا وہ چل رہا تھا, اور اس کے اندر جو ٹائیگر شروف ہیں, کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ جو ان کی گرل فرینڈ ہیں ڈیشا پاٹنی, ان کے ساتھ شاید ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. تو انہوں نے آخر کار جو ہیں, ہی اسپلڈ دا بینز آن کافی ود کرن. انہوں نے کہا جی کہ بچپن سے ہی میرا چائلڈ ہڈ کرش جو تھا وہ شردا کپور کے ساتھ تھا, اور میں اس کو کبھی کہہ نہیں سکا ہوں. اور کیونکہ اس کو بڑا زور دیا اس نے, کرن جوہر نے, اس نے کہا ایک نام بتاؤ جو تمہیں آج بھی جو ہے بڑا راک کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نام مجھے بڑا وہ کرتا ہے, اور میں بڑا اس کے ساتھ جو ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن میں نے کبھی اس کو ایز سچ بتایا نہیں, حالانکہ کام انہوں نے کافی اکٹھے کیے ہیں. تو پھر اس نے آفیشلی اس میں بول دیا کہ آئی ایم سنگل, تو جس سے پتہ چل گیا کہ اس کی جو ہے بریک اپ ہو گئی ہے دیشا پاٹنی کے ساتھ. تو جناب ٹائیگر شراف صاحب جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں, ایلیجیبل بیچلر ہیں. ایک پرانا انٹرویو جو ہے ٹائمز آف انڈیا نے نصیر الدین شاہ صاحب کا جو ہے وہ اب سامنے لے کر آئے ہیں, اور ٹائمز آف انڈیا کے اس انٹرویو کے مطابق وہ انٹرویو لے رہے تھے نصیر الدین شاہ صاحب کا, اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کیسے ہیں, یہ کیسے ہیں. تو اس میں انہوں نے فرحان اختر کے بارے میں بھی پوچھا. انہوں نے کہا فرحان اختر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اور میں سرپرائز نہیں ہوگا اگر کوئی مجھے بتائے گا کہ جی اس نے 10 course meal بنا لیا ہے, فلمیں بناتا ہے, لکھتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے, گاتا ہے, لیکن پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو مجھے اس کا کام بالکل اچھا نہیں لگتا, اور نہ ہی مجھے اس کی فلمیں اچھی لگتی ہیں. اس کی جو صرف پہلی فلم تھی دل چاہتا ہے وہ ذرا مجھے کچھ اچھی لگی تھی, اس کے علاوہ میں اس کا کوئی اتنا گریٹ فین نہیں ہوں. تو نصیر الدین شاہ صاحب یہ اپنے کیس ہی بیٹھے کیے ہیں جی,
باڈی تو اچھی ہے اس کی.
ہاں وہ تو بڑی شڑی, وہ تو اس کے لیے بنائی تھی نا, پھر اس نے وہ میکا سنگھ جب بنا تھا تو نہیں کیا بنا تھا ملکا سنگھ جب بنا تھا تو وہ مووی کے اس کے لیے. اچھا جناب ایشیا کپ 2022 میں آج تو جناب اب پاکستان کے لیے تو مشکلات ہو گئی ہیں مجید بھائی, کیونکہ 4 teams آگے جانی ہیں, اور آج جو تھا شری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچیں تھیں, تو شری لنکا نے بڑی مشکلوں سے وہ جیتے ہیں جو ہے وہ نہیں کون جیتا ہے یس شری لنکا جیتا ہے آج. تو اب 4 more جو ہے, انڈیا تو آلریڈی پہنچ گیا ہے, اور باقی کی 2 teams کون سی ہیں؟
پاکستان
کل ہانگ کانگ کے ساتھ ان کا میچ ہے.
پاکستان انڈیا اینڈ ہانگ کانگ ایک گروپ میں ہے, شری لنکا بنگلہ دیش اینڈ افغانستان ایک میں ہے. افغانستان آلریڈی آ گیا ہے اینڈ انڈیا آلریڈی آ گیا ہے. آج جب
شری لنکا بھی پہنچ گیا,
شری لنکا جب نے ہرایا اس کو شری لنکا آ گیا ہے. اب کل جو میچ ہے وہ پاکستان اور ہانگ کانگ کا ہے,
تو انتظام کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو.
نہیں ہانگ کانگ کو نہیں ماریں گے تو پھر آپ کو یو ناٹ یو ڈونٹ ڈیزرو اینی تھنگ,
ہے
نا. تو ہانگ کانگ کا پاکستان کا میچ ہے کل, اور اس میچ میں جو جیتے گا وہ چوتھا ٹیم ہوگی. تو اب بس پاکستان کو اس میں تو آنا چاہیے نا, کم از کم
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جی انٹرسٹنگ جو خبر ہے ہماری, وہ انٹرسٹنگ خبر یہ نہیں ہے کہ آج جیتا کون ہے, آج ہماری انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے دبئی میں جو ایمریٹس آئی سی سی الیٹ پینل آف میچ ریفریز ہیں جیف کرو, انہوں نے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو, جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا, ان دونوں کو فائن کیا ہے فار سلو بولنگ اوور
ٹائم کا.
ہاں تو جو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ 40% آف دا میچ فی جو ہے ان کو فائن کیا ہے, کیونکہ آپ نے بہت ہی سلو اوور ریٹ رکھا تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے 2 overs جو ہیں وہ دے فیل شارٹ, اور آپ نے بہت ہی وہ کیے سلو کیے, تو اس کے لیے انڈر دا آرٹیکل 2.22 آف کوڈ آف کنڈکٹ فار پلیئرز اینڈ سپورٹ پرسنل, تو اس نے کہا جی کہ فار سلو رن ریٹ آپ کو جو ہے یہ کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ 20% آف جو آپ کی میچ فی ہے اس کا بھی آپ کو فائن کیا جا رہا ہے, اور آپ نے الاٹڈ ٹائم کے اندر بول نہیں کیا, یو فیل ٹو بول ود ان دا دونوں کو. او مائی گاڈ وٹ از دس, یہ کیوں کیا. اور جناب پریس کانفرنس ایک جو ہو رہی تھی جس میں کہ ہم نے آپ کو جو پہلی آج کی خبر سنائی تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی 2 ministers جو ہیں ان کے تھوڑے ہلکے ہلکے پورٹ فولیو چینج کیے ہیں, ہلکا پھلکا اس کو ری شفل کہہ سکتے ہیں کیبنٹ کا, اسی پریس کانفرنس میں ٹوڈو صاحب سے ہاکی کینیڈا کے بارے میں پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاکی کینیڈا جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم CEO کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم جو ہے اسی کو رکھیں گے اور یہ ایسے چلائیں گے. تو اسی پریس کانفرنس میں جو تھے ٹوڈو صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ صحیح ڈیسیجن بنا رہے ہیں, اور ان کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں, और इनको अपने जो लीडरशिप है उसको वो करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, और तो उसमें जो है ये अगर इन्होंने ना किया तो फिर इनके लिए मुश्किल है। एशिया कप 2022 की एक और हम आपको खबर सुनाना चाहते हैं कि जो है ये बड़ी अब इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो सकता है, तो इनकी जो उमर गुल है, आपको पता ही है कि ये बॉलिंग कोच है अफगानिस्तान के, तो इनकी जो वाइफ है डॉक्टर मैरियम नकाश, उन्होंने कहा है अपने मियां को उमर गुल को कि भई जब तुम पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो थोड़ा सा प्यार दिखाना। तो उमर गुल जो है उसने उसके ऊपर जो है वो जरा जो है स्माइलिंग इमोजीज डाली हैं, और उन्होंने कहा जी कि और मेरे आका, यानी कहने की कोशिश की और आपके आप मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उसकी बीवी डॉक्टर मरियम नकाश ने लिखा, उसने कहा कि आपको पता तो चल ही गया होगा कि मेरी आपको जो रिक्वेस्ट है कितनी स्ट्रेंज है, और ये स्ट्रेंज रिक्वेस्ट आपको वरी में डालेगी, आपको परेशानी में डालेगी। एंड जनाब, लास्ट न्यूज बिफोर वी गो टू द स्पेशल रिपोर्ट, मोइन अली साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के साथ जो अब मैच खेलने के लिए आ रहे हैं यहां पे, इंग्लैंड की टीम उसको लीड कर सकते हैं, और जो है वो कह रहे हैं कि जोस बटलर जो हैं उनके कुछ इश्यूज आ गए हैं, और जेनी बर्स्टॉ जो हैं उनको और दूसरे लोग जो हैं वो भी शायद रेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेन स्टोक्स वगैरह। तो पाकिस्तान आपको पता ही है कि 17 इयर्स के बाद इंग्लैंड आ रहा है, यहां पे उसको होस्ट कर रहे हैं, तो इनके मैचेस कराची में शुरू होने वाले हैं सेप्टेम्बर 20 से 25 तक, और लाहौर में होंगे सेप्टेम्बर 28 से अक्टूबर 2 तक। तो मुझे लगता है हमारा टाइम आज खत्म हो गया, स्पेशल रिपोर्ट
आज भूली बिसरी यादें हैं ना।
अच्छा अच्छा, तो हम कल करेंगे फिर अब ये स्पेशल रिपोर्ट।
भूली बिसरी यादों को भी हमने किया है कि नॉर्मली हम 6:30 बजे शुरू करते हैं, मगर आज शुरू नहीं कर सके, तो 7 बजे से 7:30 बजे तक आप रेडियो पे भूली बिसरी यादें सुनेंगे
जी,
और 7:30 से 8 बजे तक वो कंटिन्यूएशन होगा ई आवाज टीवी पे।
ओके ओके,
तो आज अनफॉर्चुनेटली हम आपको स्पेशल रिपोर्ट नहीं सुनवा सकेंगे, स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेके आएंगे, यही वाली रिपोर्ट, आपको पता नहीं कौन सी वाली है, तो यही वाली रिपोर्ट जो है हम
इसमें के कनाडा ने कुछ यूज किए एलाइज के खिलाफ स्पाइस,
वो तो वो खबरें जो है
कल,
हम
कल,
आपको कल सुनवाएंगे, मगर अभी फिलहाल तो भाई भूली बिसरी यादें लोगों को बड़ा पसंदीदा प्रोग्राम
है।
हाँ
जी, बिल्कुल।
और हमारे लियाकत मलक साहब,
हाँ,
उसको बड़ी बहुत ही मेहनत करते हैं यार,
यस यस,
बड़ी मेहनत से उसको उस प्रोग्राम को तैयार करते हैं और पेश करते हैं, तो इसीलिए लोगों को बहुत पसंद है वो, और उसका वेट करते हैं। सॉरी आज 6:30 बजे हम शुरू नहीं कर सके, तो 7 बजे शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप रेडियो पे और टीवी पे सुन सकेंगे और देख सकेंगे, और 7:30 बजे हम यहाँ से आपको जब इजाजत चाहेंगे यहाँ से रेडियो से, तो आप टीवी पे कंटिन्यूसली वो ई आवाज टीवी पे आप जाए, ई आवाज टीवी पे साहब आज ट्रिब्यूट है नाहिद अख्तर को, नाहिद अख्तर को ट्रिब्यूट देंगे, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा, सुनाना भूलिए। डोंट फॉरगेट info@ superasia.ca info@superasia.ca, इस पे जाके आप जो भी डोनेट करना है पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए, तो आप उसमें जो है आप डोनेट कर सकते हैं, और वो सामान ऑटोमेटिकली हमें यहाँ आके पहुँच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के डोनेशन का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को देखने का, पसंद करने का। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर, आपको लिए चलता हूँ मैं अब जीशान की जानेब।
थैंक यू वेरी मच मनीष भाई, आई विल सी यू टुमारो।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया जी, मेरी तो भूल भी खत्म हो रही है। दिस इज द साइन ऑफ टायर्डनेस, ओके, वी आर ऑल वेरी टायर्ड टुडे। अब मैं ले चलता हूं आपको जीशान की जानेब, और जीशान वुड टेक ओवर, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात होंगे, और फिर भूली बिसरी यादें। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।
ब्रैम्पटन ट्रांजिट फॉर अपडेट्स।
यूके, स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दीयां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा। कैनेडा विच खालिस्तान दीयां वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा। ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दीयां वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्यूनिटी सेंटर विच पैणगियां। होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2666।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, 416-655-2000।
ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਂ Best Choice Taxi or Scarborough City Cab ab ban gayi hai ek larger taxi company, Toronto One Taxi, jo offer karte hain cash calls, corporate accounts, a large TTC contract for citywide sedan taxi work and stickers for airport pickup during peak time. Taxi owners or operators ke liye inke paas hai mustaqam aamdani banane ka shandar mauka. Sirf is mahine September 10th tak brokerage dues mein zabardast discount hasil karein. Call 416-252-7777.
Radio Sangoma, music, news and information.